अब आगे मूसा अलैहिस्सलाम की बात से मिसाल दी गई। वलकद आतेना मूसा तिसा आयात, और अलबत्ता तहकीक मूसा अलैहिस्सलाम को हमने 9 निशानियां दी। कैसी निशानियां थी? वो बय्यिनात थी, रोशन निशानियां थी। मूसा अलैहिस्सलाम को तो काफी निशानियां दी गई, लेकिन खास निशानियां जो फिरौनियों के लिए के सामने लाके दिखाई गई, उनमें 9 निशानियां क्या थी? आसा था, यद बैदुआ था, जो हाथ रोशन, फिर उस तरह जादूगरों को शिकस्त देना था, उनके सामने हुआ था, फिर समुंदर का फट जाना, फिर कहत साली, फिर तूफान, फिर टिड्डियां, जुए, मेंढक, खून, इनका जिक्र सूरह आराफ में भी आ चुका है, हम पढ़ चुके हैं। ये उनके सामने दिखाई गई, वाजे थी इनके सामने। फसल बनी इसराइल, बनी इसराइल से पूछ लो, फर्क तो पता है ना बनी इसराइल और फिरौनियों के अंदर, किब्तियों के अंदर। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो तिसा आयात लाए थे ना, वो किब्तियों के लिए लाए थे। बनी इसराइल तो पहले से मुसलमान थे, तो उनको फिरौनी, उनको हमको किब्ती कहते, तो उनके लिए लेकर आए थे कि वो ईमान ले आए। तो बनी इसराइल से पूछ लो, इस जा हम जब मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, यानी उनके पास निशानियां लेकर आए थे, फ़काला लहू फिरौन, तो कहा उसको, किसको, हु की जमीर किस तरफ जा रही है? मूसा अलैहिस्सलाम की। तो उसको, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा फिरौन ने, इन्नी ला अज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा, कि ए मूसा, मुझे तो तू सहर ज्यादा लगता है, जिसके ऊपर जादू किया हुआ। यानी ऐसे जब इंसान के ऊपर जादू हो जाता है, तो वो बहकी बहकी चीजें करता है, वो अपनी सेंसेस में नहीं होता, तो उसका ये मतलब था कहने का कि मुझे तो लगता है कि तेरे ऊपर जादू हुआ हुआ। अब देखें, बजाय इसके कि इन निशानियों को मान के ईमान लाने के, वो क्या कह रहा है? ये बात यहां पर क्यों बताई गई? ये इसलिए बताई गई कि आप देखें, आज का जो हमने सबक स्टार्ट किया है, तो हमने पढ़ा कि मुशरिकी ने मक्का ने निशानियां मांगी थी कि आप हमें ये निशानियां दिखाएं। तो उनको बताया गया कि तुम अपनी कुव्वत और सरदारी और अपनी ताकत के इतना तुम्हें घमंड है, और तुम निशानियां मांग रहे हो कि हमें निशानी दिखाओगे तो हम ईमान लाएंगे, वरना हम हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। तो अपने से पहले याद करो, एक फिरौन भी था जो सिंबल था ताकत का, कुव्वत का, तकबर का। उसके सामने तो इतनी निशानियां आई, 9 निशानियां आई, वाजे निशानियां आई, बिल्कुल क्लियर थी, बय्यिनात थी, वो तो फिर भी नहीं माना। तो तुम बताओगे तुम क्या मानोगे फिर? फिरौन नहीं माना, उसको भी निशानियां दिखाई गई, तो तुम कहां मानोगे? वो भी बड़ा मुतकब्बिर था। तो फिर लेकिन देखो उसका हाल क्या हुआ, जब उसने निशानियों को नहीं माना। वो तो कहता था ना रब्बुकुमुल आला, तो ए मुशरिकीन ने मक्का, तुम भी निशानियों को मांग तो रहे हो, अगर निशानियां देख कर कोई ईमान लाना होता किसी ने, तो फिरौन ईमान ले आता, वो भी ईमान नहीं लेकर आया था। और ये बात तुमने पूछनी है तो बनी इसराइल से पूछ लो, यहूदियों से पूछ लो। कौला, उसने कहा, लकद अलिंत मा अंजला हा उलाए इल्ला रब्बुस समावाती वल अर्दी बसायर। कौला, उसने कहा, किसने कहा? मूसा अलैहि सलाम ने फिरौन को ये जवाब दिया कि तू जानता है कि ये मा अंजला हा उलाए, नहीं उतारा इन निशानियों को किसने, मगर रब्बुस समावाती वल अर्द ने, मैं खुद नहीं लेकर आया हूं ये निशानियां, तुझे अच्छी तरह पता है। वो अच्छी तरह जानता है क्योंकि वो मूसा अलैहि सलाम को जानता था। तो ये जान ले कि ये निशानियां मैं खुद नहीं लाया, बल्कि ये रब्बुस समावाती वल अर्द की तरफ से है, और बसायर हैं, ऐसी हैं कि ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने भेजी, बल्कि बतौरे निशानी, बतौरे दलील भेजी है। इस चीज की, किस चीज की दलील के तौर पर भेजी है? कि मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के भेजे में, अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए, अल्लाह के नबी हैं। वा इन्नी ला अज़ुन्नुका या फिरौन मसबूरा, और बेशक अलबत्ता मैं गुमान करता हूँ कि ए फिरौन तू हलाक होने वाला है। अब ये बात फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को जब कही थी कि तू सहर ज़दा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जैसे फिरौन कह रहा है ना, फिरौन को यकीन है कि मैं तो यकीन रखता हूँ कि तू सहर ज़दा है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा यकीन ये है कि तू हलाक होने वाला है। अल्लाह अकबर। तो ये मुकालमा मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन के साथ हुआ था। क्योंकि जब किसी ने बात ना माननी हो ना, तो फिर आगे से वो यही कहता है कि तुझे पर तो जादू है, तेरे ऊपर तो ये है, तुम क्या बेकी बातें कर रहे हो, अजीब बातें कर रहे हो, ताकि दूसरे की इंपॉर्टेंस को कम कर दे। तो फिरौन ने फिर कहा फरौद, फिर उसने इरादा किया फिरौन ने, अय्यस्तफिज़हुम मिनल अर्थ, कि वो उखाड़ फेंके इनको जमीन में। और आज भी जो फिरौन जैसे लोग होते हैं ना, जिनको अपनी ताकत का बड़ा घमंड होता है, उनके पास जब हक बात लाई जाती है तो अब क्या करें, उनके पास कोई दलील तो होती नहीं कि माने, तो धमकियों पे उतर आते हैं। और उनको ये होता है कि हम इनको निकाल देंगे, जिला वतन कर देंगे, हम इनको एक्सपेल कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, फलां कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। तो इस्तिफ़ज़ाज़ क्या होता है, किसी को हल्का समझ के उठा के फेंक देना, बाहर फेंक देना, और चाहे इसको जिला वतनी भी कह सकते हैं या मार देना भी कह सकते हैं, दुनिया से भी निकाल देना या उस जगह से निकाल देना, दोनों ही बातें हो सकती हैं। और आपको पता है कि मुशरिकीन ने मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही प्लान कर रहे थे, और ये बात पहले भी आ चुकी है, जब हमने आयत 76 में देखा था कि आप उसमें देख सकते हैं, उसमें भी यही लफ्ज आया, और यही आया कि अहले ईमान के लिए कि वो ऐसा ही चाहते थे, इनकी ये ख्वाहिश थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी और अहले ईमान के, इनको या तो जिला वतन कर दें या इनको मार ही दें, क्या कर दें, कत्ल कर दें। और आप ये भी देख चुके हैं कि इबलीस के बारे में भी यही बात आई है, यही लफ्ज जो है ना इबलीस के बारे में आया, कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अपने प्यादे और अपने सवार इनके ऊपर चढ़ा दे, इनको हल्का समझ के, और इनको उखाड़ दे तो जमीन से अगर तू कर सकता है। तो इबलीस ने भी यही काम किया, वो भी अहले ईमान को उखाड़ देता है, वो भी अहले ईमान के साथ यही करना चाहता है, और यही फिरौन करना चाहता था, और यही मुशरिकी ने मक्का करना चाहते थे, और यही तमाम ऐसे लोगों का जो इबलीस की वाली खसलत रखते हैं, वो अहले ईमान के लिए भी ऐसा ही चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसने ये इरादा किया, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सका। उससे पहले ही फ़अग़रक़ना हुआ मम्माहु जमिया, तो हमने उसको गर्क कर दिया, और जो उसके साथ थे सारों को हमने गर्क कर दिया। और इसी तरह आप देखें कि उन्होंने इरादा किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बचा लिया, लेकिन उसके बाद बदर में इनके बड़े बड़े सरदार कैसे कत्ल हो गए थे। वकुलना मिन बादी ही, और हमने कहा इसके बाद, किसके बाद, फिरौन के गर्क होने के बाद हमने कहा ली बनी इसराइल, बनी इसराइल से ये जो मूसा अलैहि सलाम की कौम थी, इनसे कहा उस्कुनुल अर्द, तुम अब रहो बसो जमीन में। कौन सी जमीन थी, बाज कहते हैं मिस्र की, बाज जगह पे आपको लिखा मिलेगा फलस्तीन की, क्योंकि इसके बाद जब मूसा अलैहि सलाम इनको लेकर समुंदर से पार चले गए थे, और फिर काफ़ी अरसे तक ही आपको पता है 40 साल तक उसी मैदान में घूमते रहे, और फिर अल्लाह ताला ने इनको दाखिल होने दिया फलस्तीन में, और उसके बाद यहाँ पे इनकी हुकूमत हुई। तो फलस्तीन भी मुराद हो सकता है कि बस जाओ फलस्तीन में, या फिर दाऊद और सुलेमान अलैहि सलाम के ज़माने में फिर इन्होंने दोबारा मिस्र का कब्जा इनको मिल गया था, तो ये वहां पे भी रहे थे, तो वहां भी मुराद हो सकता है, बाहर क्या जहां पे भी, मगर इनको कहा गया कि फिर रहो बसो जमीन के अंदर। फइजा जाअ वअदुल आखिरती जिना बिकुम लफीफा, तुम जमीन में फैल जाओ रहो बसो, जब वादा आखरा का आएगा आखिरत का, तो हम तुम्हें लपेट लेंगे, जमा कर लेंगे। तो एक तो इसका मतलब सिंपल जो मतलब है कि कयामत का जब वादा आएगा तो जहां पे भी बनी इसराइल होंगे अल्लाह ताला सबको जमा कर लेगा, लेकिन वो तो सबको ही करेगा, अल्लाह ताला सारी इंसानियत को करेगा, तो इसमें बनी इसराइल की फिर क्या बात आ गई। तो दूसरा माना ज्यादा दुरुस्त लगता है कि जिसमें ये है कि यानी जब कयामत का वक्त करीब होगा, उस वक्त पूरी दुनिया से तुम्हें लपेट लिया जाएगा, एक जगह कर दिया जाएगा। यानी जैसे आप कचरा ब्रूम से आप इकट्ठा कर लेते हैं ना, झाड़ू देते हैं, एक जगह जमा कर लेते हैं, फिर आप उसको उठाते हैं, उसी तरह इनको एक जगह जमा कर लिया जाएगा, फिर उठाया जाएगा। क्यों? इसलिए आप देखेंगे जिस कौम ने भी अपने रसूल को झुटलाया, अल्लाह ताला ने रसूल को तो बचा लिया मगर उस कौम को सफाए हस्ती से मिटा दिया। मगर यहूद के मामले में ऐसा नहीं हुआ, आप देखते हैं इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से तो सूली चढ़ा दिया हुआ ना, वो तो अल्लाह ताला ने उठा लिया, बचा लिया ईसा अलैहिस्सलाम को, लेकिन इन्होंने तो सूली चढ़ा दिया था। अब ये यहूदी थे ना, तो यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ये किया, उनको झुटलाया और उनको सूली चढ़ाने का इरादा कर लिया और अपनी तरफ से चढ़ा भी दिया, तो अब ये कौम तो सफा हस्ती से नहीं मिटी, ना ये तबाह हुई, इनके साथ फिर क्या हुआ? तो इनका जो फैसला है वो पेंडिंग है, अभी इनका फैसला होना है, इनके साथ भी वही सलूक है, लेकिन अभी इनको कुछ इंटरवल दिया गया है, कुछ मोहलत दी गई है, और ये इम्प्लीमेंट कब होगा? जिस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले जाहिर है ये तो दुनिया में पूरी में फैले होंगे, तो कैसे एक एक जगह पे उनको तो जाके नहीं मारा जाएगा, बल्कि जब इनका ये वक्त आएगा ना, कयामत का वक्त करीब होगा और इनका अल्लाह ताला ने जो इनके ऊपर अजाब भेजना है उसका वक्त करीब होगा, तो इनको पूरी दुनिया से एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा। और आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके आज तक कभी भी इनको इंडिपेंडेंट रियासत नहीं मिली थी, इंडिपेंडेंट स्टेट इनको कभी भी नहीं मिली, ये कभी कहीं, कभी कहीं किसी मुल्क में, कभी यूरोप में बसे, कभी कहीं बसे, कहाँ कहाँ जाके इन्होंने पनाहें ली, लेकिन इनका अपना इंडिपेंडेंट कोई भी मुल्क नहीं था, सिवाय अब जाके ये पिछली सदी के अंदर इनको एक मुल्क मिला, और इसके बाद ये सब पूरी दुनिया से इस मुल्क में इकट्ठे होने शुरू हो गए। इससे पता चलता है कि ये जो वादे का वक्त है वो करीब है, क्योंकि इन्होंने दज्जाल का मददगार बनना है, और ईसा अलैहिस्सलाम आके दज्जाल को भी कत्ल करेंगे और इस्लाम का गलबा भी होगा, सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को खत्म कर देंगे, और ये यहूदी भागेंगे और दौड़ेंगे, और इनको कोई छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हत्ता के किसी दरख्त के पीछे भी ये पनाह लेने की कोशिश करेंगे तो वो दरख्त बोल पड़ेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको मार दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, मैंने आपको बताया था गैन रौफ दाल, इस दरख्त के सिवा, इस दरख्त के पीछे, ये दरख्त ना एक झाड़ी की तरह का दरख्त है, बहुत ऊंचा नहीं होता, तो इसके पीछे कोई यहूदी छुपेगा तो ये नहीं बताएगा, ये यहूदी को पनाह देगा। इसीलिए इसराइल में आप देखें कि गरकत के दरख्त की सबसे ज्यादा काश्त हो रही है। ठीक है, तो यहां पे उनकी भी बात हो रही है और कुरैश के सरदारों को भी सुनाया जा रहा है कि जब अल्लाह के किए हुए वादे बनी इसराइल का पीछा कर रहे हैं आज तक, और वो तबाह होके रहेंगे जिन्होंने रसूल को झुटलाया, तो तुम बताओ तुम झुटलाओगे तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अरसे की इनको मोहलत मिली, वरना तो इनको उसी वक्त ही ये खत्म हो जाना चाहिए था, कि जो वहां पे जब इन्होंने ईसा अलैहि सलाम के साथ ये करने का किया था, तो जैसे दूसरे पैगंबरों के साथ जब भी ऐसा करने का हुआ वो कौमें तबाह हो गई, तो अल्लाह ताला का ये तरीका रहा है, लेकिन इनको सिर्फ अल्लाह ताला ने मोहलत दी। वबिलहक अनजलना हुआ बिलहक नजल, और हमने उतारा इसको हक के साथ और हक के साथ ही उतरा। क्या मतलब है इसका? हक के साथ ही उतारा और हक के साथ ही उतरा मतलब, यानी ऐसा नहीं है अल्लाह ताला ने हक के साथ उतारा और वैसा वो उतरा भी हक के साथ, यानी अल्लाह ताला ने जो इरादा किया जो अमल किया वो वैसे ही हुआ, अल्लाह ने नाजिल किया उस तरह ही नाजिल हुआ भी। ना होता ना, मैं तो कोई कोशिश करूं और वो लेकिन वैसा रिजल्ट ही ना आए, हुआ नहीं वैसा, तो वो एक मेरी कमी है। लेकिन अल्लाह ताला ने जैसा चाहा इसको कि ये हक के साथ नाजिल हो वैसे ही ये हुआ, यानी इसके अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये प्रिजर्व्ड है। किसी तरह को भी कोई शको शुभा आपके दिल में नहीं आना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह ताला ने नाजिल तो किया था, क्या पता रास्ते के अंदर इतने शैतान थे ये थे, हो सकता है किसी ने उचक लिया हो। नहीं, इसीलिए फरमाया जो अल्लाह ताला से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो ऐसा फरिश्ता था बीच में जो रूह अल अमीन जिनको कहा जाता है, अमानतदार फरिश्ता। हालांकि कौन सा फरिश्ता है जो अमानतदार नहीं है? हर फरिश्ता ही अमानतदार है, क्योंकि फरिश्तों में तो ताकत ही नहीं, कुदरत ही नहीं। मैंने बताया ना आपको कोई नाफरमानी करने की तो उनमें ताकत नहीं है, तो सारे फरिश्ते ही अमानतदार। मगर किस लिए ये कहा गया रूह अल अमीन? ताकि यकीन हो जाए कि याद रखो ये फरिश्ता बहुत अमानतदार फरिश्ता है जिसके जरिए अल्लाह ताला ने ये कलाम उतारा, और जी कुव्वत वाला भी है, ऐसा नहीं कि उसे कोई छीन के ले जाए, मुता है। इतनी अल्लाह ताला ने सिफात बयान फरमाई जिब्राईल अलैहि सलाम की, तो तुम ये नहीं कह सकते ए कुरैश कि जो शुभात तुम डाल रहे हो कि ये पता नहीं कहीं से सुन के आ गया, किसी से पढ़ के आ गया, इसने ये खुद ही बना लिया। आज भी मैंने किसी को सुना तो मैं हैरान हो गई, याला यानी उन्होंने कहा कि नहीं ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम है, ये मोहम्मद ने खुद लिखा हुआ है, ये उन्होंने कहा। मैं सोच रही थी कि ये भी आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो पीछे जो वसवसे डालने वाला वो तो सेम ही है ना, शैतान। तो यहां से हमें ये एक प्रूफ मिलता है कि ये कलाम भी हक है, ये किताब हक है, इसमें सब कुछ सच है, अल्लाह की तरफ से है, इसमें कोई चेंज नहीं हुई, इसको मान लेने में ही हमारी भलाई है। और वमा अरसलना का इल्ला मुबशिर व नजीरा, और नहीं हमने भेजा इसको मगर कुछ खबरी देने वाला और डराने वाला। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बशीर और नजीर बना के दे भेजा है। बशीर किसके लिए? उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, उनके लिए खुशखबरियां सुनाने वाला, और जो कुफर करते हैं उनको डरावे देने वाला, वॉर्न कर देने वाला। तो समझ आ गई यहां से कि एज इट इज अल्लाह ताला की बात हम तक पहुंची हुई है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सिवाय मुसलमानों के किसी के पास ऐसा कलाम नहीं है जो एज इट इज उनके पास आज तक महफूज है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपको पता है कि उनको तो नबुवत से पहले भी लोग सादिक और अमीन कहते थे। तो इस किताब की हर बात अल्लाह की तरफ से, इसका हर हुक्म अल्लाह की तरफ से, इसमें कभी शक ना करें, ठीक है? और ये भी कि हक है, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो गलत हो, सब सही है। लेकिन देखिए ना, आज मुसलमानों का भी ये हाल है ना कि वो आप एक जहाज में बैठते हैं ना, तो जहाज उड़ाने वाला एक पायलट है, हम उस जहाज में आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि हमें यकीन है कि ये पायलट हमें मंजिल तक पहुंचा देगा, इसीलिए तो हम अपनी जान का रिस्क लेके उसमें बैठे हैं और आराम से बेफिक्र होके बैठ जाते हैं। मगर एक रब पे हमें उतना भी एतमाद नहीं है जितना एक पायलट पे, उतना भी ट्रस्ट नहीं है कि वो हमें कभी गलत बात नहीं बताएगा, गलत डायरेक्शन में नहीं लेकर जाएगा। उसने जब कहा है कि मैं इस किताब पे चलोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत है, ये जन्नत का रास्ता है, तुम्हारी तुम्हारी मंजिल जन्नत तक पहुंचा दूंगा, तो हमें उस पे यकीन नहीं है? क्या वो कभी हमें कोई गलत हुक्म दे सकता है? एक इंसान है। हमने कभी आज तक हम में से किसी ने जाके पायलट से ये नहीं पूछा तुम्हारी क्वालिफिकेशन, कितने कितने साल से तुम जहाज उड़ा रहे हो, क्या तुम्हारा तजर्बा है, क्या तुम्हारी डिग्री है, क्या है, कितना एतमाद है ना उसके ऊपर कि जिधर लेकर जा रहा है खामोशी से हम उसके साथ चल रहे हैं, बड़े सुकून से चल रहे हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला हमें जिस तरफ ले जाना चाहता है इस कुरान में, इस कुरान के जरिए जिस तरफ को, जिस डायरेक्शन में हमारी जिंदगी को लेकर जाना चाहता है, हमारे इतने सवाल आते हैं, हमारे इतने तराज आते हैं, हम इतनी दफा ना करते हैं। फिर आप देखिए पायलट जिस स्पीड पे चलाए, जिस हाइट पे लेकर जाए जहाज, हम नहीं कभी एतराज करेंगे, हमें पता है ये हमें मंजिल तक पहुंचाएगा, इसलिए नहीं एतराज करते ना। लेकिन हमारा रब हमें एक से दूसरा हुक्म दे दे तो हमें ये हो जाता है हाय ये क्यों, अब ये भी हम करें, हाय अब ऐसे भी हम चले। अल्लाह अकबर, हम फिर भी ये सोचेंगे हमने अपना नफा नुकसान भी खुद देखना है, हमें खुद पता है आज की सेंचुरी में कैसे रहना है, हमें नहीं परवाह कि कुरान क्या कहता है। याद रखिएगा फिर ये कुरान के जो अल्फाज हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हैं, हर हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है। इसमें से आगे ये कहना मैं सोचूंगी, मैं देखूंगी, अभी तो मैं मशवरा करूंगी, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा हो सकता है आजकल, तो फिर ये है कि इसका मतलब है कि भरोसा ही नहीं कि ये अल्लाह की तरफ से। जब ऐसे क्वेश्चंस करें जो इतराजात हैं तो वो फिर क्या मतलब है, क्या फिर वाकई हमें यकीन है कि अल्लाह की तरफ से है, ये हुक्म क्यों आया, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर फिरौन ने इस किस्म के सवालात किए थे तो मूसा अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि तुम हलाक होने वाले। जब उसने इतराजात किए और क्या उसके बाद के लोग दीन के ऊपर ऐसे इतराजात करने के बाद हलाकत से बच सकते हैं? अल्लाहु अकबर। कुरआनन फरकनाहु लितकराहु अलन नास, ये कुरान हमने अलग अलग करके यानी ऐसे फर्क फर्क करके नाजिल किया ताकि तुम इसको पढ़ सको, आला मुक्सिन आयस्तगी के साथ, आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसे फर्क फर्क करके, फर्क फर्क करके मतलब है कि यानी थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा, ये भी मतलब है वह नज़लनाहु तंजीला, नाजिल किया हमने इसको तंजील के साथ, नज़लना नज़ला युनज़िलु तंजील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके, वक्फे वक्फे से। देखिए आप के लौहे महफूज से आसमाने दुनिया तक तो इंजाल हुआ है, अनजला कहते हैं एक दफा उतारने को, और नजला कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके उतारना, तो 22 साल और कुछ महीने यानी तकरीबन राउंड ऑफ अबाउट 23 साल कह देते हैं, तो 22.5 साल 23 साल कह दें आप, उतने में उतरा, इतना अरसा लगा, एक दफा क्यों नहीं उतर गया, उनको भी ये एतराज होता था एक दफा क्यों नहीं उतर गया, इसके पीछे भी हिकमत थी, ली तकराहु आलन्नास, ये हिकमत यहाँ पे एक बताई गई ताकि आप लोगों पे पढ़े आए आला मक्स मुक्स मुक्स के साथ यानी आयस्तगी के साथ, ठहर ठहर के, ताकि क्यों ठहर ठहर के, क्यों एक दफा ही क्यों नहीं सारा सुना देते लोगों को। देखिए जो आहिस्ता आहिस्ता करके बात बताई जाती है वो ही एब्जॉर्ब भी होती है। अब आपको सारा कुरान एक ही हफ्ते में पढ़ा दिया जाए, एक ही महीने में पढ़ा दिया जाए, जैसे हम दौरे कुरान में करते हैं, तो एब्जॉर्ब नहीं होती ना कि पूरी तरह बात समझी जाती, बस एक ऊपर ऊपर से ही समझा जाता है, इस तरह जैसे अब हम डेप्थ में देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, वो नहीं हो सकता। फिर अमल भी तभी हो सकता है जब थोड़ा थोड़ा करके आए, एक दफा आपको ओवरलोड कर दिया जाए, अब लोग सारे लोग दौरा कुरान को समझते हैं कि बस हमने दौरा कर दिया ना कुरान का, तो बस कुरान हमने सीख लिया सारा, हालांकि अमल उसके बाद कितना बदला, नहीं बदलता ना, क्योंकि एक ही दफा इतनी तेजी में आपसे गुजरा जा रहा है, बस एक एक दफा समझने, एक रिविजन तो वो हो सकती है, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमें अमल बदलने के लिए मुझे सारा कुछ समझ आ गया, वो अमल आसान तभी होगा जब थोड़ा थोड़ा करके आए, और कुरान इसी तरह उतरा मक्की सूरतें हैं, तौहीद को मजबूत किया गया, पक्का किया गया, आखरत के ईमान को पक्का किया गया, रिसालत पे ईमान को पक्का किया गया। फिर मदनी सूरतें आप देखें, उनमें अहकामात दिए गए, कहीं शराब के, कहीं सूद के, कहीं पर्दे के, कई और चीजों के अहकामात आए, कैसे अपनी माशरती जिंदगी गुजारनी है, सब चीजों के अहकामात बाद में दिए गए ताकि आसानी हो। तो एक ग्रेजुअली, एक सिस्टमेटिकली हुआ, कौन सी चीज पहले कौन सी बाद में, इस तरह से हुई, वक्फे वक्फे के साथ हुई, तब लोगों के लिए आसान हो गया अमल करना। और देखिए इस तरह से भी कि अल्लाह ताला ने फर्क फर्क करके करा कि सूरतें उतारती, आयतें उतारी, ये आयतें और सूरतें अल्लाह ताला की तरफ से उतरी। हाँ, जो पारे हैं, पारों की तकसीम इंसानों ने बाद में खुद की, रुकुओं की तकसीम खुद की, लेकिन आयतें और सूरतें 114 सूरतें हैं और 6236 तकरीबन आयात है, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ऐसे में एक ही जुमला होता जो अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट होता और नास पे खत्म होता, तो कितना मुश्किल होता, पढ़ना भी मुश्किल होता, हिफ्ज करना भी मुश्किल होता, उसको समझना भी मुश्किल होता। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से हमारे लिए आसानी कर दी, वाजे कर दिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके फिर बयान किया, ताकि आप भी थोड़ा थोड़ा करके लोगों को आगे पढ़ के सुनाएं, ठीक है। और ये अल्लाह ताला ने तंजील है, ये यानी आहिस्ता आहिस्ता करके हुआ, हालात के मुताबिक, वही फिर चीजें ज्यादा भी असर कर रही थी लोगों पे। और यही तरीका होना चाहिए बाद में भी तालीम का, कि थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए। ऐसे नहीं है कि एक एक पारा हर दिन कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, बस सुबह कर रहे हैं, शाम कर रहे हैं, बस लोगों को सुना दिया, बस अपने सर से उतार दिया। नहीं, अब देखिए आपके पास पूरा एक हफ्ता होता है कि आप उसको एब्जॉर्ब करें, उसको और गौरव फिक्र करें, उसको समझें, और फिर उसके बाद उसके ऊपर अमल की भी कोशिश करें। कुल आमिनू भी औला तुमिनू, कह दीजिए ईमान लाओ इसके साथ या ना तुम ईमान लाओ, अल्लाह ताला को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसके कुरान को कोई फर्क पड़ता कि अगर तुम ईमान नहीं लाते तो पता नहीं कोई कमी हो जानी। नहीं, इन अल्लादीना उतुल इल्म मिन कबली, बेशक वो लोग जो दिए गए इल्म इससे पहले किसे, यानी कुरान नाजिल होने से पहले जो लोग इल्म दिए गए, कौन लोग थे जो इल्म दिए गए, यानी जो अहले किताब थे, ईसाई और यहूदी। इजा युतला अलैहिम, जब पढ़ी जाती हैं उन पर क्या आयतें, इस कुरान की आयतें, इस कुरान को पढ़ा जाता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है, यखिरुना लिल अदकानी सुज्जदा, तो वो गिर पड़ते हैं ठोड़ियों के बल सजदा करते हुए। जब उनके सामने ये आयात रखी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा होता है कि वो गिर पड़ते हैं, अल्लाह ताला का कलाम सुन के उनके ऊपर ऐसा असर होता है, वो इस कलाम की अजमत से गिर पड़ते हैं, इस कलाम को जब समझते हैं। और आप देखें वाकई कुराने पाक जब जिन लोगों के आगे पढ़ा गया, उन्होंने इसको समझा, जो लोग मुसलमान भी होते हैं, उसके बाद उनका रिएक्शन कैसा होता है, अब देखते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग रोने शुरू हो जाते हैं, मुसलमान होते हैं, रोते हैं, क्या चीज़ है जो उनको मिल जाती है, अल्लाह ताला की अजमत का एहसास, उसकी पहचान जब होती है, इस्लाम लेकर आते हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे कोई खोई भी चीज़ मिल गई। तो ये भी अपनी ठोड़ियों के बल सजदे में गिर जाते हैं, यकूलुना सुबहाना रब्बीना इन कान वादु रब्बीना लमफऊला, वो कहते हैं हमारा रब पाक है। पाक से मतलब आपको समझ आ गई ना, आप सुबहान जब कहते हैं पाक है तो आम मीनिंग में लिख लेते हैं, लेकिन इसका पूरा मीनिंग आपको समझ होनी चाहिए कि सुबहान का मतलब है हर ऐब और नक्स से पाक, यानी इसमें कोई किसी किस्म की कमी नहीं है, कोई ऐब नहीं है। और नंबर 2 के उसके अंदर तमाम जो खूबियां हैं उनका कमाल उसके अंदर है, उनकी पीक उसके अंदर है, ठीक है। जो हमारा रब पाक है, इन क्या ना वादु रब्बीना लमफूला, बेशक उस हमारे रब का वादा हो के रहने वाला है, यानी जो भी उसने वादे किए हैं, जितने भी वादे किए हैं सारे ही पूरे होके रहने वाले हैं, चाहे वो कयामत का वादा है, चाहे वो ईमान वालों का जन्नत में दाखिल होने का वादा है, चाहे वो कोई भी वादे हैं। और ये भी सबसे बड़ा वादा है उनकी जो किताबों में था कि जो वो पढ़ते थे कि एक आखिरी नबी आएगा, तो अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया क्योंकि उनकी किताबों में ये लिखा हुआ था ना। वयखिरूना लिल अदकान, और वो गिर पड़ते हैं ठोड़ियों के बल, यबकूना रोते हुए, वयजीदुहुम खुशुआ, और उनके बढ़ा देता है ये उनकी आजी को। दोबारा ये बात दोहराई कि अल्लाह ताला को कितनी पसंद आई है उनकी ये अदा, उनकी ये बात, कि ऐसे लोग कुरान को सुन के देखें कैसे गिर पड़ते हैं सजदों में और रोते हुए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद फरमाई कि जब कुरान को पढ़ो तो रो, यानी कुरान को जो ध्यान से पढ़ेंगे, रोना तिलावत से तो नहीं सिर्फ आता ना, तो फरमाया कुरान की तिलावत करो और रो, और रोना ना आए तो कोशिश करो कि रो पढ़ो। जब कुरान पाक को पढ़े तो उसकी अजमत हमारे दिलों में होनी चाहिए। तो पहला सजदा अल्लाह ताला की ताजीम का और शुक्राने का था, और ये वाला सजदा देखिए पहले भी है ना, सुज्जतन 107 में भी है और इस आयत में भी है कि वो गिर पड़ते हैं थोड़े, तो दो क्यों है, एक शुक्राने का है और एक सजदा कुरान को सुन के जब रिक्कत तारी होती है इंसान सजदे में चला जाता है। तो जब इंसान वाकई दिल से पढ़ता है और उसको ये पता है कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे, जैसे हजरत इकरमा रो पढ़ते थे ना, कहते थे मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम। और वाकई जिन लोगों को, जो अहले किताब लोग हैं, जब जो वाकई हक वाले लोग हैं, जैसे अब्दुल्ला बिन सलाम थे, जैसे आपको पता है वरका बिन नौफल, सबसे पहले तो वरका बिन नौफल थे, वरका बिन नौफल जिनके पास हजरत खतीजा लेके गई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उन्होंने पहचान लिया था और उन्होंने कहा था ये तो वो ही फरिश्ता है जो पिछले अंबिया पे आया, और अगर मैं जिंदा हूं उस वक्त तक जब आपकी कौम आपको यहां से निकालेगी तो मैं आपकी जरूर मदद करता। तो उनको हक पता चल गया था। और फिर इसके अलावा और भी जो अहले किताब, जैसे हजरत सफिया थी, वो भी जान गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदियों के कबीले से थी। नज्जाशी देखें ईसाई था, रो पड़ा था जब उसने सुना था हजरत जाफर से, जब आयात सुनी थी सूरह मरियम की। तो एक तो फिजिकली भी झुक जाना और एक कुरान को सुन के इंसान के दिल को झुक जाना चाहिए कि अल्लाह की बात है, मैं इसके सामने कुछ नहीं बोल सकती, ये मेरे अल्लाह ताला का कलाम है। इंसान आगे अपनी इंतहाई, देखिए सजदा क्या है, इंतहाई जिल्लत का एक इजहार है कि मैं अपने आप को गिरा दूं, मैं अपने माथे को अपने रब के आगे रख दूं। इंसान इससे ज्यादा नीचे गिर नहीं सकता जितना वो सजदे में होता है। तो क्या फिजिकल सिर्फ सजदा है या फिर अंदर भी सजदा करे इंसान का, अंदर इंसान की अकल समझ, जब आपने सर सजदे में रख दिया तो आपने अपनी अकल अल्लाह के आगे सजदे में डाल दी, फिर भी अगर ये कहना मेरी अकल तो ये कहती है, मेरी समझ तो ये कहती है, मैं तो ये समझती हूँ। किसी ने पिछले दिनों इतनी इस बात के ऊपर वो मुजिर थी कि मेरी समझ ये कहती है, मुझे बड़ी समझ है, मेरी समझ ये कहती है कि पर्दा जो होता है वो आपका अपना दिल का पर्दा होता है और आपको पर्दे की जरूरत नहीं है। तो देखो आज हमने अपनी अकलों को किधर बिठाया हुआ, इतनी ऊपर, वैसे हम जमीन पे सजदे कर रहे हैं लेकिन हमारी अकल सजदा नहीं करती। जब हम अपनी अकल को अल्लाह के आगे बड़ा समझते, अल्लाह की बात के आगे, मैं ये समझती हूँ, मैं क्या चीज है। तो लिहाजा इंसान वैसे भी सजदे में जाए और अपनी अकल समझ को भी अल्लाह ताला के आगे गिरा दे, बिछा दे। और ये देखें हदीस में आता है कि जब आदमी सजदे की आयत पढ़ के सजदा करता है तो शैतान रोता हुआ जुदा होता है और कहता है हाय खराबी, इंसान को सजदे का हुक्म हुआ, इसने सजदा कर लिया, जन्नत में जाएगा, और मुझे सजदे का वो हुक्म हुआ, मैंने इनकार। तो जो कुरान पाक में आयत सजदा आती है, जैसे ये आयत है, तो इंसान जब इसकी तिलावत सुने तो फिर वो सजदे में चला जाए। और उसमें सजदे की जो आयात सजदा है उनकी दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, सजद वजहिया लिल्लज़ी खलक़हु व शक्क़ा सम'अहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो अगर ये ना आती हो तो इंसान फिर वैसे सुबहाना रब्बी अल आला पढ़ ले, लेकिन ये दुआ याद करने को कोशिश करें आप। कुरान करीम में तकरीबन 14 आयात सजदे की, तो आप देखें ये वाली आयत भी जो है ना इतनी ज्यादा इसके अंदर वाकई अपने आप को गिरा देने वाली बात है कि मेरे चेहरे ने उस हस्ती को सजदा किया जिसने अपनी कुदरत और ताकत से इसको बनाया है, इसकी समाअत को बसारत को बनाया अपनी कुदरत ताकत से, वो सबसे बेहतरीन तखलीक करने वाला। तो ये मौका इस मौके पर अहले किताब जब समझ जाते तो वो सजदे में चले जाते। तो जब वाकई इंसान अल्लाह ताला को पहचान लेता है ना तो वाकई उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो झुक जाता है अपने रब के आगे। और हदीस में है जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोया, जो अल्लाह ताला के खौफ से रोया अपनी बातों के ऊपर नहीं, किसी ने दुख दिया उस पे नहीं, या अपने किसी कोई चीज नहीं मुझे हासिल हुई, या किसी ने मुझे सताया, या किसी ने मुझे हर्टफुल बात की उस पे नहीं, या कोई बात याद आ गई उस पे नहीं, बल्कि जो अल्लाह के खौफ से रोया तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो उसको दोजख में दाखिल नहीं करेगा, यहाँ तक कि दूध थनों में वापस चला जाए। दूध भी कभी जो निकाला हुआ दूध होता है कभी थन में वापस जा सकता है? नहीं जा सकता ना। तो जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोने वाला है, एक दूसरी हदीस में आता है उसको अल्लाह ताला निजात अता फरमाएगा, तिर्मिज़ी की जो हदीस, और इस हदीस में कि अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में दाखिल नहीं करेगा, उसका जहन्नुम में जाना इतना ही मुश्किल है जितना थनों में दूध का वापस चले जाना। तो वाकई अगर इंसान को कुरान पाक का इल्म हो तो उसके ऊपर कुरान असर करता है, लेकिन ये तभी होगा ना जब हमें समझ आ रही होगी, तभी रिक्कत भी तारी होती है, तभी अल्लाह की बड़ाई का एहसास भी होता है, तभी जहन्नुम का पढ़ के इंसान रोता है, तभी अल्लाह के खौफ से रोता है, कभी अल्लाह की नेमतों का सुन के रोना आ जाता है, कभी अल्लाह की मोहब्बत का सुन के रोना आ जाता है, कभी अल्लाह ताला के बड़ाई इंसान पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। तो ये तब होता है जब इंसान समझ के पढ़ रहा होता है, और ये जो हम खत्म करते हैं एक के बाद एक कुरान, एक के बाद एक, और बस जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं, ये समझ के बगैर है जब, तो फिर रोना कैसे आएगा? खुद सोचें। तो ये एक रोना ऐसा है जो हमें जहन्नुम से आजादी दिला सकता है, बाकी सारे रोने जो हैं फिल्में देख के रोना, ऐसा कोई सीन देख लिया अब उसमें रो रो के हलकान है, या वैसे ही अब शौहर ने कोई डांट लगा दी तो उसके ऊपर हाय वाय करके रो रहे हैं, या बच्चा जरा सा उसको कुछ हो गया हाय हाय बस वो हाय हाय हो रही है उसमें रो रहे हैं, ये चीजें नहीं है जिसके ऊपर कोई जहन्नुम से आजादी की इतनी कोई बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करें जो खुशू और खुजू रखने वाले, और जो अल्लाह ताला की आयात पढ़ के सुन के समझ के रोने वाले, अल्लाह ताला की बड़ाई का एहसास जिनके दिलों में इतना हो। कुले दुअल्लाह अवे दुअर्रहमान, कह दीजिए तुम चाहे अल्लाह पुकारो चाहे रहमान पुकारो, अय्यम्मा तदाउ, जो भी नाम लेके पुकारोगे फलाहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए सारे ही अच्छे अच्छे नाम है। ये क्यों कहा गया अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो? दरअसल कुफारे मक्का जो थे वो अल्लाह का नाम जानते थे मानते थे, लेकिन रहमान को नहीं मानते थे, इस नाम को वो जानते ही नहीं थे। वो कहते थे ये क्या नाम है, आप खुद तो हमें कहते हैं खुदा को मानो और आप दो दो खुदाओं का नाम ले रहे हैं। तो नहीं, अल्लाह भी वही है रहमान भी वही है। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, आप सजदे में कह रहे थे या रहमान या रहीम, तो मुशरिकीन ने कहा कि मोहम्मद लोगों को सिर्फ एक खुदा की तरफ दावत देते हैं, देखो जी खुद आप दो दो खुदाओं को पुकार रहे। तो बता दिया गया कि नहीं, ये अल्लाह ताला के और अल्लाह के सारे ही अच्छे नाम अल्लाह के ही हैं, ठीक है, तुम जिससे भी पुकारो, लेकिन खास तौर पे ये जो दो नाम है ना, अल्लाह और अर्रहमान, ये नाम किसी को भी नहीं रखने हैं, और ना अल्लाह नाम किसी ने नहीं अपना आज तक रखा, लेकिन बाज लोग रहमान नाम रख लेते हैं। ये भी नाम खास अल्लाह ताला के लिए, आप अब्दुल रहमान रख सकते हैं, रहमान नहीं रख सकते, ठीक है, और ना ही किसी को कहना चाहिए रहमान साहब, नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, अब्दुल रहमान कहे, क्योंकि कोई रहमान नहीं हो सकता। और अल्लाह ताला के इन नामों के साथ अल्लाह ताला से दुआएं करें, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, इस तरह कह के दुआ करनी चाहिए, जैसे इस हदीस से भी मैंने आपको बताया। और ये भी कि और भी जो अस्माए हुस्ना है वो सारे अल्लाह ताला के अच्छे नाम है, और उनसे भी अल्लाह ताला को पुकारा जा सकता है, या रज़ाक, या फत्ताह, या आलीम, या समी, या बसीर, या वदूद, तो ये अल्लाह ताला के नाम है। आप देखें इन नामों के इतने प्यारे प्यारे ये अल्लाह ताला के नाम है, हम खुद अल्लाह ताला को कोई नाम नहीं दे सकते, ये जो अल्लाह ताला ने हमें बता दिए हैं वही उसके नाम है, या तो कुरान में है, या हदीस में है, या अल्लाह ताला के और नाम है जो उनका अल्लाह ताला को ही बस पता है, हमें नहीं पता है, क्योंकि एक दुआ में आता है, मसनून दुआ में, है अल्लाह वो नाम जो तेरे पास है तुझे उनका पता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला के जो 99 नाम याद कर लेता है, यानी इतनी उससे उन नामों से मोहब्बत है, उनको समझता है, उनको याद करता है, उनके ऊपर यकीन रखता है ना, अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। यह हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जो 99 नामों को याद कर ले, और याद से मतलब सिर्फ हिफ्ज करना नहीं है, समझना भी और उनको ऊपर ईमान रखना भी, तो अल्लाह ताला उसको इंसान को जन्नत में दाखिल करेगा। लिहाजा इन नामों को याद करना चाहिए, तो ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, और 99 से भी ज्यादा है, सिर्फ 99 नहीं है, लेकिन 99 नामों को कोई याद कर लेगा, जितने हमें पता है उनमें से भी 99 याद कर लेंगे, तो भी ये आपके लिए हदीस पूरी हो सकती है। और देखिए एक बात ये कि अल्लाह ताला के लिए अस्माउल हुस्ना है, हुस्ना अच्छे नाम, अब कोई नाम हम अल्लाह ताला को देते हैं, अगर हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ले जलालहू, इस तरह जब हम कहते हैं तो ये भी अल्लाह ताला के, इस तरह से भी कुराने पाक में भी आता है और हदीस में भी आता है, तो इस तरह से भी कहना सही है, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, ये कहना भी सही है, लेकिन ये कहना अल्लाह मियाँ, ये नोट करें इस बात को, मेरी बात को जरा इस वक्त तवज्जो से सुने, अल्लाह मियाँ ये कहना सही नहीं है। मियाँ आप किसको कहते हैं, किसी बड़े को कह देते थे मियाँ जी, या फिर शोहर को मेरे मियाँ, तो अल्लाह ताला के लिए ये लफ्ज मुनासिब नहीं है, ये अल्लाह ताला की शान के लायक लफ्ज नहीं है, इस लफ्ज को ना बोला करें, अल्लाह ताला कह लें, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह लें, आप अल्लाह सुबहाना हुआ ताला कह दे तो, लेकिन ये लफ्ज ना बोले, ये हमारी अपनी जुबान का एक लफ्ज है जिसमें कमी है, नक्स है, नक्स वाला कोई लफ्ज अल्लाह ताला के लिए हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप अपने नोट करना है, अपने घर में भी बताना है, और इस चीज को छोड़ देना है, अगर ये जुबान पे चढ़ा भी हुआ है आहिस्ता आहिस्ता करके इसको छोड़े। वला तजहर भी सलाती का वला तो खौफित भी है वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, और ना अपनी नमाज को बहुत पस्त करो, ना ना बहुत अपनी नमाज को बुलंद करो, ना पस्त करो, बल्कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बुलंद आवाज से कुरान पढ़ते थे, या जहरी नमाजें पढ़ाते तो बुलंद आवाज से पढ़ते, तो मुशरिकीन कुरान को और अल्लाह ताला को बुरा भला कहते थे, और अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, गालियां देते थे, मजाक उड़ाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पस्त आवाज से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, ताकि आपके सहाबा को भी सुनाई नहीं देता था, तो ये आयत नाजिल हुई थी, ये बुखारी और मुस्लिम में भी ये बात है। और दूसरी एक और रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो सुना कि अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पढ़ रहे हैं तो बहुत हल्की आवाज में पढ़ते हैं, और हजरत उमर जब पढ़ रहे थे तो बहुत बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। तो पूछा कि आप, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से पूछा कि आप क्यों इतनी पस्त आवाज में पढ़ते हैं, इतना हल्की आवाज में क्यों? तो फरमाया मैं अपने रब से सरगोशियां करता हूँ, उसको मेरी हाजत का इल्म है। तो उनसे कहा गया कि आप अच्छा करते हैं, और हजरत उमर से कहा गया आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने कहा मैं शैतान को भगाता हूँ और सोए हुए लोगों को जगाता हूँ, इसलिए मैं ऊंची आवाज में पढ़ता हूँ। तो उनसे भी कहा गया आप अच्छा करते हैं। तो जब ये आयत नाजिल हुई तो अब ये है कि अब ना बहुत बुलंद ना बहुत पस्त। तो अबू बकर सिद्दीक से आप ने फरमा दिया कि आप कुछ थोड़ा सा ऊंचा कर लें, और हजरत उमर से कहा गया कि आप थोड़ा सा काम कर लें। तो ये एक बात इसके अंदर हमें पता चलती है। तो वैसे जो सलात का लफ्ज है, आपको पता है ये इसका मतलब क्या होता है? सलात का मतलब होता है नमाज भी और दुआ भी, और दुआए रहमत भी। इसीलिए कहा गया ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हम जब सलात भेजते हैं तो क्या है, रहमत की दुआ करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम ये सलात का लफ्ज बोलते हैं आपके लिए तो दुआए रहमत कहते हैं, दुरूद पढ़ना जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआए रहमत करना है, वो सलात है आपके लिए, आपके लिए हम सलात भेज रहे हैं यानी दुआए रहमत कर रहे हैं। और वैसे भी दुआ को सलात कहते हैं, यानी आप अपनी दुआएं भी ना तो इतनी बुलंद करें, चीख चीख के दुआएं कर रहे हैं, ना इतनी पस्त करें। तो दुआ का भी एक दरमियाना होना चाहिए, सब चीजों के अंदर मियाना रवि, एतदाल, दरमियाने रास्ते को पसंद किया गया। तो दुआ में भी ऐसा करना चाहिए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला दिलों के हाल तक जानता है, और इंसान सोचे मैंने अब बोल के क्या करना है, अल्लाह ताला को तो पहले ही पता है कि मेरी क्या हाजत है, तो बेशक उसको दिल का हाल मालूम है, पहले से पता है, मगर वो चाहता है कि आप बोलें, वो मांगने को पसंद करता है, ठीक है? इसलिए आप मांगे, बोल के बताएं। बल्कि हदीस में आता है जो अल्लाह ताला से मांगता नहीं है अल्लाह ताला उससे नाराज होता है, और दुनिया वाले मांगने वालों से नाराज होते हैं। तो दुआ में भी तवाज़ुन, नमाज में भी ना तो बुलंद आवाज से ना बिल्कुल ही पस्त जब किसी को जमात करा रहे हैं, और वैसे भी जब हमारी नमाज होती है ना तो कोशिश करें कि बस इतनी हल्की आवाज हो कि आपके अपने कान सुन लें ताकि आप अलर्ट रहें, ठीक है? इतनी सी हल्की आवाज में आप पढ़ सकते हैं नमाज। वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये एंड इस सूरत का आखिरी आयत, और जबरदस्त आयत, इतनी जबरदस्त आयत है ये कि इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आयत इज्ज़ है, इज्ज़ा, आयत इज्ज़ा है, इज्जत वाली आयत है, ठीक है? यानी कितनी, जाहिर है बहुत बड़ा मकाम है इस आयत का, और कुव्वत वाली आयत, इज्जा का मतलब ये भी कुव्वत वाली आयत है। और इस आयत का को इब्ने कसीर ने इस आयत के बारे में ये भी लिखा है कि इस आयत को जो कोई इंसान पढ़ता है रात में, तो घर में अगर ये रात में पढ़ी जाए तो इस घर में कोई आफत नहीं आती, कोई चोरी नहीं हो सकती जो इस आयत को पढ़ ले। और इब्ने कसीर लिखते हैं कि अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के छोटे बड़े लोगों को ये आयत सिखाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आयतुल अज़ यानी इज्जत वाली आयत, ये इसका नाम रखा था। और ये भी हमें मिलता है कि बाज़ मुफसिरीन ने ये लिखा है कि ये आयत सूरह इखलास के मुशाबे है, इसलिए इसकी इतनी अहमियत है, क्योंकि सूरह इखलास में भी यही बातें, अभी हम आयत देखेंगे ना तो यही बातें हैं, बस अल्फाज मुख्तलिफ हैं। तो उसमें भी अल्लाह की तौहीद का जिक्र है और शिर्क से अल्लाह ताला को बुलंद करार दिया गया, इसमें भी ऐसे ही है। तो इसी वजह से देखें ये सूरह इखलास भी तो आप देखें ना 1/3 कुरान के बराबर है, और ये आयत में उसी किस्म की सिफात मौजूद है, तो इस आयत की भी अहमियत इतनी ज्यादा है, ठीक है? और फिर ये कि ये आयत, जैसे मैंने आपको बताया कि बाज जो हमारे असलाफ थे वो बच्चों को ये आयत याद करवा देते थे, और ये समझा जाता था कि सोने वक्त पढ़ने से आफतों से निजात मिलेगी। तो मैंने जैसे आपको पहले भी ये बात बताई है कि कुछ बातें तजर्बात से आई हैं, जैसे बड़े बड़े फुकहा मुहद्दिसीन, ये जैसे इब्ने कसीर ने ये बात लिखी है, और बड़े बड़े आइम्मा कराम उन्होंने अपने तजर्बे किए कोई कुरान में कि ये वाली आयत पढ़ने से ये फायदा हुआ, ऐसा पढ़ने से ऐसा हुआ। तो अगर वो सुन्नत में नहीं भी है, तो जैसे हमने पहले बात की थी कि शिफा हासिल हो गई या रहमत है, तो इस को फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, इब्ने कसीर कोई छोटी शख्सियत नहीं है वो, और ये भी इस बात की रोशनी में कि अल्लाह ताला ने इसको शिफा करार दिया और इसको रहमत करार दिया। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला ने इसको शिफा और रहमत करार दे दिया, तो कहीं से भी पढ़ लेंगे तो शिफा है इसके अंदर, रहमत है इसके अंदर, जिस्मानी भी और रूहानी बीमारियों के। ठीक है, अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताई हैं वो तो है ही है, वो तो जरूर है, वो तो उनकी अहमियत कम नहीं है, वो ही तो सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन उसके अलावा भी आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। तो वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, और कह दीजिए तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। हम्द वो तारीफ जिसमें शुक्राने के जज्बात हो, और शुक्राना नेमत पे होता है, और नेमतें हमारे पास कितनी है बेहिसाब, जो गिनी नहीं जा सकती। ठीक है, तो जब गिनी नहीं जा सकती तो शुक्र कैसे फिर अदा होगा। इमाम कुर्तुबी इस बारे में लिखते हैं कि अल्लाह ताला की जो बेशुमार नेमतें, उनका शुक्र तो अदा हो ही नहीं सकता, और नेमतों को जब गिना ही नहीं जा सकता तो शुक्र कैसे करेंगे। तो ऐसे लगता है कि तो शुक्र तो फिर कभी मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन शुक्र करना वाजिब भी है, जरूरी है, तो क्या करें फिर। तो इमाम कुर्तुबी कहते हैं अल्लाह ताला ने एक कलमा ऐसा बनाया है कि अगर सारे जहान की सारी नेमतें, जो भी जितनी भी नेमतें हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते, अगर उन सारी नेमतों को एक लुकमा बना दिया जाए और इंसान वो लुकमा उठा के अपने मुंह में डाल ले और हलक से उतार ले, तो यानी सारी नेमतें एक दफा में ही उसने हासिल कर ली, यूज कर ली, तो एक कलमा अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि इंसान वो दिल से अदा कर दे ना एहसास के साथ, समझ के, तो शुक्र अदा हो जाता है। और वो कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन कलमा, कलमा शुक्र जो है ना, बेहतरीन कलमा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला को आपने ये नहीं कहना थैंक यू, ये नहीं कहना, और हम एक दूसरे को तो कहते हैं जजाक अल्लाह खैर, ये तो अल्लाह को तो नहीं कहना, अल्लाह ताला को क्या कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफजल दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, है वो कैसे दुआ हो गई, वो तो इसमें तो दुआ की बात ही नहीं है, कैसे हुई फिर दुआ। असल में जब आप शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला और नेमतें अता फरमाता है, और जो पहली नेमत है उसको भी जवाल से महफूज कर देता है, तो फिर कितनी अच्छी दुआ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ए नबी आप कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सिर्फ जिक्र नहीं है, ये दुआ भी है, जब आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहते हैं, और ये किसी और के लिए नहीं है, अल्हम्द जो है वो सिर्फ लिल्लाह है, लिए अल्लाह के, अल्लदी वो अल्लाह, लम यत्तखिज वलद, जिसने नहीं बनाया कोई बेटा कोई बच्चा, यानी वो किसी का मोहताज नहीं है, उसको औलाद की जरूरत नहीं, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, और कोई उसकी बादशाहत में शरीक नहीं है। जितने भी दुनिया में पूजे जाते हैं खुदा बना के, वो चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे कोई नबी हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई बुत हो, चाहे कोई राम सीता फलान भगवान पता नहीं क्या क्या नाम रखे, कोई अल्लाह ताला के साथ उसकी बादशाहत में शरीक है ही नहीं। तो आपने शिर्क की नफी कर दी, किसी तरह भी कोई शरीक नहीं, आपने अल्लाह ताला के लिए औलाद की नफी कर दी, तो ना उसकी औलाद है ना उसका कोई शरीक है, वलम यकुल लहू वली मिन अतुल, और उसका कोई वली भी नहीं है, कोई हामी, कोई उसका मददगार, कोई उसके कामों के अंदर उसकी हेल्प करने वाला, उसका कोई वजीर हो, कोई उसे कमजोरी की वजह से कोई उसके साथ मतलब हेल्पर साथ लगा हो। देखे ना, जैसे हमें हमें 1000 दफा मशवरा करने की जरूरत होती है, कोई कोई कुछ भी नहीं करता, फिर भी हम कहते हैं नहीं मुझे तसल्ली के लिए मेरे साथ रहो, कोई साथ किसी के साथ की जरूरत होती है। नहीं, अल्लाह ताला को किसी वली की किसी कमजोरी की वजह से जरूरत नहीं है। तो क्या क्या नहीं, वलद सी का भी इनकार, औलाद का भी इनकार, शरीक का भी इनकार और वली का भी इनकार। ठीक है, अब ये कह देना कि अल्लाह ताला के जो है ना वो उसके साथ फलां भी है, वो भी उसके साथ किसी चीज में शामिल है जो के सेहत दे सकता है, या फलां है जो औलाद दे सकता है, या फलां है जो हमें रिस्क पहुंचा सकता है, किसी और से भी मांग लें, किसी कोई और भी है जो उसके साथ किसी चीज में इख्तियार रखता है, तो इस सब की नफी हो गई यहाँ। अल्लाह ताला को अपने लिए सबसे ज्यादा जो बात पसंद है ना वो तौहीद की डिक्लेरेशन है, कि इंसान तौहीद बयान करे अल्लाह की, और इसमें तौहीद बड़ी खूबसूरती से बयान हुई भी है, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई चीज ना नहीं भी, यानी कोई चीज मुआफिक या कोई चीज जैसे एक्सपेक्टेड थी या जैसे थी उस तरह से नहीं भी हुई तो तब भी क्या फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। यानी इंसान फिर इसका मतलब है कि जब ये कह देता है ना हर हाल में ही अल्लाह का शुक्र है, तो इसका मतलब है कि चाहे मुझे ये फैसला पसंद हो ना हो, ये चीज पसंद आए ना आए, ये जो कुछ हो गया, ये नहीं भी सही हुआ, लेकिन मैं अल्लाह के हर फैसले पे राजी, सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए, हर हाल में ही मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो आपने अपनी रजा बता दी ना कि मैं राजी हूं अल्लाह से, वकबिर हूं तकबीरा, और बड़ाई बयान कर, उसकी बड़ाई बयान करना पूरी तरह, तकबीर पढ़े तो ये तकबीर भी कैसे पढ़ेंगे, अल्लाह की बड़ाई कैसे बयान करेंगे, किस तरह से इंसान, एक तो वैसे अल्लाह ताला की बड़ाइयां बयान करना, अल्लाह का जिक्र बुलंद करना, उसके अहकाम को मानना, ये उसको बड़ा मानना है ना, बड़ा उसको मानने, अपनी जात पे भी मैं बड़ा मानूं, अपने घर में भी अल्लाह को बड़ा मानूं, अपने बिजनेस में भी अल्लाह को बड़ा मानूं, कि मैंने जो जिसको बड़ा मानते हैं उसकी मान के चलते हैं ना, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी उसको बड़ा मानूं, अपनी हुकूमतों में भी उसको बड़ा मानूं, ये होता है बुलंद करना। ये नहीं सिर्फ बुलंद करना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तस्बीह मैंने कर ली आज, एक अल्लाह अकबर की कर ली है, एक अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने अल्लाह को बड़ा ही नहीं बनाया। अल्लाह बड़ा है हर एक चीज के अंदर, मेरी मेरी अपनी जात भी कुछ नहीं ये चीज है, अल्लाह अकबर है, ये अल्लाह ताला को अकबर बनाया क्या? आपके घर में क्या अल्लाह अकबर है, या बच्चों की मर्जी चल रही है, उसकी मर्जी चल रही है, फलां की मर्जी, आपकी अदालती निजाम है, अदालतें हैं आपकी, उन जिनमें फैसले होते उनमें अल्लाह अकबर है हा? आपके बाजारों में अल्लाह अकबर है, इकोनॉमी में अल्लाह अकबर है, तो हर जगह पर अल्लाह ही का नाम बुलंद होना चाहिए, अल्लाह ही बड़ा है, उसको बड़ा समझे। जब बड़ा, जब आपके जहन के अंदर यह होगा कि बड़ा अल्लाह है, मैं नहीं हूं, बड़ा अल्लाह है, मेरी फैमिली नहीं है, बड़ा अल्लाह है, ये हुकूमती जो निजाम बनाया हुआ ये नहीं है, तो फिर अल्लाह की चलेगी ना। अच्छा, अल्लाह ताला को बड़ा ही ना समझा तो फिर मेरी भी चलेगी, उसकी भी चलेगी, उसकी भी चलेगी, अल्लाह ताला को तो फिर आपने सोचा वो तो मस्जिद में ही बस बड़ा है, बाकी जगहों पे मैं खुद ही बड़ी हूं, नहीं, सारी ये जमीन ही अल्लाह की है, सारी जमीन, जिस जो मालिक है कि नहीं है जमीन सारी अल्लाह की, तो फिर जो मालिक है उसी का नाम बुलंद होना चाहिए ना, उसी का कानून चलना चाहिए ना, उसी का हुक्म चलना चाहिए ना, ये उसका हक है, वो कुछ भी कहे, अव्वल तो उसकी हर बात हिकमत पे मबनी, हर बात इल्म पे मबनी, हर बात हमारे फायदे की, हर बात है जो हक है, सही है। लेकिन लेकिन मैं ये वैसे कहती हूँ एक बात, कि मसलन है कि मैं अपने घर के मालिक हूं, अब मैं को घर को तोड़ना शुरू करना, मैं फोड़ना शुरू कर दूं, कुछ उसको नुकसान करना शुरू कर दूं, आप फिर भी नहीं मुझे पूछ सकते, क्योंकि आप कहते हैं नहीं जी मालिक है, जो मर्जी करे अपने घर, कुछ उल्टी सीधी उसकी डेकोरेशन कर दूं, उल्टा सीधा पेंट कर दूं, आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप कहेंगे नहीं ये मालिक है, अल्लाह ताला तो कोई बेकार काम करता ही नहीं, उसका कोई काम आबस नहीं। वो वैसे मैं कहती हूँ, अगर वो कर भी दे कोई ऐसी बात, कोई कह भी दे, तब भी उसका हुक्म मानना जरूरी है, हालांकि वो उसकी तो कोई बात ऐसी है भी नहीं। फिर भी हमारे एतराजात खत्म नहीं होते, फिर भी हम अल्लाह का निजाम नहीं चाहते, औरों का निजाम चाहते हैं। फिर भी हम कहते हैं कानून चलेगा तो इंसानों का चले, ब्रिटिश का कानून चले, उसका कानून चले, अल्लाह का कानून पता नहीं हमारे साथ कोई ज्यादती हो जाएगी। हम इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ पे अल्लाह का कानून नहीं चलता, यहाँ पे तो उनका कानून चलेगा, तो हम वो वाले कानून के मुताबिक, इसलिए कि हमें कोई फायदे मिल रहे होते, हम उनको लेना चाहते, ऐसे ही करते हैं ना। क्योंकि अल्लाह को अकबर ने, ठीक है उन्होंने कानून बनाया हुआ है, आप जिस मुल्क में रहते हैं आप उसके कानून को देखते हैं, लेकिन जहां पे वो कानून अल्लाह की बात के अगेंस्ट जा रहा, लेकिन हमारे फायदे में चूंकि जा रहा है, तो हम उस कानून को बड़ा फायदा उठाते हैं उससे। तो जमीन जब अल्लाह की है तो मर्जी भी अल्लाह ही की चलनी है, ठीक है, हुक्म भी अल्लाह ही का चलना है। मेरी ये जमीन मेरी और आपकी नहीं है, तो लिहाजा इस चीज को समझना चाहिए कि अल्लाह की बड़ाई बयान करना क्या है, अल्लाह को बड़ा करना क्या होता है। और हम ये जो कुरान पढ़ रहे हैं, तो अब ये भी अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करना है, अल्लाह को बड़ा मानना है, तो तभी उसका कलाम पढ़ रहे हैं ना, वक्त दे रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, आप इतनी देर के लिए बैठते हैं, इसको समझने में अपना जहन लगा रहे हैं, अल्लाह को बड़ा समझा है ना। तो इसी तरह ये भी तहिया करें कि मैंने अल्लाह का नाम बुलंद करना है खुद भी, और मैं नियत करती हूँ कि दूसरी जगहों पे भी अल्लाह ही का नाम बुलंद हो, और इसके लिए मैं इस कुरान पाक के मिशन को लेके आगे चलूँ, इसको भी आगे पहुंचाऊं, इसको भी आगे लोगों तक इसका मैसेज दूं, ताकि अल्लाह ही का नाम बुलंद हो। खुद ब खुद तो नहीं ना हो जाएगा अल्लाह का नाम बुलंद, कोई कोई तो इस काम को आगे लेके चलेगा ना। अब जब अल्लाह के अहकामात को, उसके कलाम को आगे पहुंचाएंगे, तो वहां पे भी अल्लाह का नाम ही बुलंद होगा। तो अल्लाह के कुरान को आम करना, ये इरादा कर ले, नियत कर ले, अपनी जिंदगी का गोल बना ले, तभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, तभी ये हुक्म माने भी जाएंगे। जब पता ही नहीं कि क्या है, तो अल्लाह ताला के हुक्म कौन मानेगा, अल्लाह को कौन बड़ा बनाएगा। ठीक है, तो इसको पहुंचाएं, अपने घरों में भी बताएं, अपने प्यारों को बताएं, अल्लाह के कलाम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, अल्लाह ताला के नाम को बुलंद करें इस तरह से। तो बड़ी प्यारी आयत है और बहुत डेप्थ है इस आयत के अंदर, अगर इसको इसकी तफसीर करने लगे तो बहुत लंबी तफसीर हो जाए, लेकिन अगर आप इतनी बात को समझ गए, तो इंशाल्लाह ताला एक मिशन के साथ आप उठेंगे कि अल्लाह ही को मैंने बड़ा बनाना है, और अपने अपनी जिंदगी में भी, और यही कोशिश करनी है कि इस जमीन पे भी अल्लाह ही का नाम बुलंद रहे हमेशा। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.